के गीतामृत के कार्यक्रम में तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पिछले हफ्ते हमने सुना कि भगवान पिछले कई श्लोकों में ये जो अंतिम लाइन है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इसे दोहरा रहे हैं। और ये एक वजह बन जाती है कैसे भगवद गीता ये भगवान का एक गीत है। यदि आपको याद होगा पिछले बुधवार हमने इसकी चर्चा की थी कि ये भगवान का गीत क्यों कहा गया है, क्योंकि एक गीत में एक लक्षण ये गीत का होता है कि कई वाक्य जो हैं उनकी पुनरुक्ति होती है, रेपिटेशन। और दूसरी वजह अनुष्टुप छंद में भगवद गीता की रचना हुई है, जो भी एक गीत का लक्षण है। परंतु इस गीत के साथ साथ भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे दार्शनिक सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये भगवान की खूबी है कि गीत के द्वारा ऐसे डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स हमें सिखा रहे हैं आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। तो पिछला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें कि निग्रहीतानि सर्वशः भगवान ने अर्जुन को कहा कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को हर प्रकार से वश में कर लेता है, सर्वशः इंद्रिय पर निग्रह, सर्वशः हर तरफ से, पूर्ण रूप से, सभी प्रकार से, सभी स्थानों में, कृष्णा कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद इज कंप्लीटली एट ऑल टाइम्स इन ऑल प्लेसेस। कोई उसमें ऑप्शंस नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहता है तो भगवान श्री कृष्ण उससे ये अपेक्षा रखते हैं कि वो एकमेव अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा अपने मन काया हर प्रकार से, हर स्थान में, हर समय, हर स्थिति में वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। और ये प्रेम का लक्षण भी बताया गया है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो हर समय, हर स्थिति, हर स्थान और हर तरीके से, ये नहीं कि हफ्ते में केवल मंगलवार के दिन हम प्रेम करेंगे उससे, वो भी सुबह 10 मिनट के लिए, या साल में एक बार केवल जो त्योहार आता है उस समय, नहीं, एब्सोल्यूटली कंप्लीटली, तब जाकर शुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो पिछले श्लोक से आज के श्लोक का क्या संबंध है पहले ये जान ले। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कौन है, क्योंकि पिछले 2 स्लाइड में हमने अभी देख लिया कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य वही है जो हर प्रकार से अपनी इंद्रियों पर निग्रह रखे। और फिर मानो कि भगवान एक बहुत तकनीकी तरीके से, या आज की भाषा में हम कहेंगे आधुनिक तरीके से, वही सिद्धांत को कंपैरिजन के द्वारा बता रहे हैं, प्रीचिंग थ्रू कंपैरिजन। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है, प्रीचिंग थ्रू कंपैरिजन, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो ये मत समझिएगा कि ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये वो खुद उनकी उपज है, ये भगवान श्री कृष्ण स्रोत है। क्योंकि आज के श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं, एक भोगी एवं एक योगी में क्या अंतर है, हालांकि ये श्लोक द्वापर युग का, इसलिए द्वापर युग में भगवान ने केवल भोगी और योगी इसमें ही अंतर बताया। आजकल एक और श्रेणी आ सकती है, वो क्या है? रोगी। भोगी, रोगी, योगी। श्रील प्रभुपाद ने इसको बहुत ही ग्राफिक तरीके से एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया। उन्होंने कहा अपने कुछ शिष्यों के साथ वो कृष्णा कॉन्शियस लाइफस्टाइल पर चर्चा कर रहे थे, तो बोल रहे थे इफ अ पर्सन हैज टू गो टू पास टूल वंस अ डे ओनली ही इज अ योगी, इफ ही हैज टू गो टू पास टूल ट्वाइस अ डे देन ही इज अ भोगी एंड मोर देन टू टाइम्स फिर उसको कोई रोग हुआ है देन ही इज अ रोगी। तो यहां पर से प्रभुपाद बहुत कुछ समझा रहे थे कि उसका ओरिजिन कहां से होता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो आज के श्लोक में भगवान ने भोगी एवं योगी में अंतर किया है, एक उदाहरण से समझाया है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सर्वभूतानां, भगवान कह रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति है, तो सामान्य व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? आत्मसंयमी से। संयमी, यहां पर संयमी का अर्थ है आत्मसंयमी या निग्रहीतानि सर्वश, जिसने हर प्रकार से अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो आत्मसंयमी व्यक्ति और सर्वभूतानां, जनरल पॉपुलेस एंड अ पर्सन हु हैज कंट्रोल्ड हिज सेल्फ एंड हिज सेंसेस। तो उस दोनों में अंतर क्या है? या निशा, निशा अर्थात रात्रि, निशा काल, रात्रि का काल, डार्कनेस और नाइट, जैसे कि निशाचर, सुना निशाचर प्राणी रात्रि के समय जो विचरण करते हैं वो है निशाचर प्राणी, कोई भी हो सकता है। तो या निशा सर्वभूतानां, तो भगवान कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्तियों के लिए जो रात्रि है, निशा है, तस्याम जागृति संयम, वो एक आत्मसंयमी व्यक्ति के लिए जागरण का समय हो जाता है। इसको हम लिटरली भी समझेंगे टाइम के अनुसार, टाइम का विभाजन कैसे हुआ है। और फिर आगे भगवान कहते हैं यस्याम जागृति भूतानि, कि जिस समय सर्वसाधारण व्यक्ति या भोगी जब वो जागृत होता है, उसकी जागृत अवस्था, सा निशा पश्यतो मुने, उस समय जो दिव्य दृष्टि वाला मुनि है वही आत्मसंयमी, उसको पश्यतो मुने कहा है। ऐसा मुनि जिसकी दिव्य दृष्टि है वो उसे रात्रि मानता। तो रात्रि और दिवस, दिन और रात को लेकर एक भोगी और एक योगी, इन दोनों की तुलना, कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट भगवान हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पूरा अनुवाद आज के श्लोक का इस प्रकार से है, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो यहां पर वो योगी जिसने अपनी इंद्रियों पर निग्रह स्थापित कर लिया है, उसको भगवान यहां पर आत्मनिरीक्षक भी कह रहे हैं और आत्म संयमी भी कह रहे हैं। आत्मनिरीक्षक का अर्थ क्या है कि जो निरीक्षण करता रहता है अपने स्वयं के सूक्ष्म शरीर का, कि उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं और फिर उसका रहन सहन, ये सब कुछ, तो उसका निरीक्षण बहुत कम है जो अपना उस प्रकार से निरीक्षण करते रहते हैं। हाँ, हम लोग अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, लेकिन वो आत्मनिरीक्षण नहीं है, वो क्या है, देह निरीक्षण है कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, शुगर लेवल कितना है ब्लड में, ये सब कुछ देह निरीक्षण है। तो हाँ, उसकी रिपोर्ट तो हमारी आ जाती है कि सब नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, बहुत कम होता है नॉर्मल होता है जो, तो डॉक्टर ने कह दिया भाई आपका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डेंजर लेवल के ऊपर जा रहा है, तो आपको ये सब कुछ बंद, सब लिस्ट दे देता है, सब कुछ बंद। फिर किसी का शुगर लेवल बढ़ गया ब्लड, तो फिर उसके लिए ये सब कुछ बंद और ये सब कुछ आपको करना है। तो हाँ, वो जो हमारा देह का निरीक्षण है वो तो हम रोज करते रहते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम एक साधारण मनुष्य नहीं हो। ये साधारण जो जनता है वो देह निरीक्षण में लगी रहती है। क्यों भगवान अर्जुन को आत्मनिरीक्षक के बारे में बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन उस समय केवल देह निरीक्षण कर रहे थे। किनका? कौरवों का देह निरीक्षण, कि ये दुर्योधन, ये मेरा भाई, ये मेरे पितामह, ये मेरे गुरुजन द्रोणाचार्य कृपाचार्य, केवल उनके देहों को देखकर उनका निरीक्षण कर रहे थे। इसलिए पहले अध्याय का शीर्षक भगवान श्रील प्रभुपाद ने क्या दिया है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज। ऑब्जर्विंग का अर्थ क्या होता है? निरीक्षण। आर्मीज क्या? केवल जो स्थूल स्तर पर सेना है उसका निरीक्षण अर्जुन कर रहे थे। तो भगवान यहां पर अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, तुम्हारी दृष्टि कोई साधारण नहीं है। तो जो साधारण दृष्टि वाले मनुष्य होते हैं वो केवल ये देह निरीक्षण या सेना निरीक्षण करते रहे होंगे, लेकिन तुम पश्यतो मुने, एक मुनि की दृष्टि रखो और उसके परे देखो, और सबसे पहले अपने अंदर झांक कर अपने आत्मा का निरीक्षण करो। तो इसलिए यहां पर भगवान, हालांकि दिन और रात का उदाहरण तो दे रहे हैं, तो भगवान यहां पर हमको सिखा रहे हैं कि दिन और रात ये क्या है, ऑपोजिट्स। तो भगवान हमको सिखा रहे हैं कि कैसे इस संसार में हमें जो विरोधाभास की स्थितियां हैं, ऑपोजिट्स जो हैं, उसमें से कैसे सीखना है, दिन और रात से हम क्या सीखते हैं। जैसे कि अब यहां पर ये अब साइंटिफिक टर्म्स हैं, ये जो आजकल साइंस जो है इसकी स्टडी कर रहे हैं, मैटर और एंटी मैटर। तो ये लर्निंग फ्रॉम ऑपोजिट्स, वो क्या देख रहे हैं कि यदि हम इस संसार में मैटर या जड़ पदार्थ को देखते हैं तो इसका ऑपोजिट भी होना चाहिए, क्योंकि वो इस सृष्टि में हर चीज का एक ऑपोजिट देख रहे हैं। दिन है तो रात है, कहीं पर सर्दी है तो कहीं पर गर्मी है, कहीं पर वर्षा है तो कहीं पर नहीं है, उसका अकाल है। तो ये सारे जो फिनोमेनास का ऑपोजिट देख रहे हैं, तो देख बहुत ही बृहद विचार ये उनका है कि यदि जड़ पदार्थ है, हम सब जड़ पदार्थों से बने हैं, ये अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इन सब से, पृथ्वी वायु जल, इन सब से बने हुए हैं जड़ पदार्थ, तो फिर इसका एंटी मैटर भी होना चाहिए, सूक्ष्म ये भी होना चाहिए। अब वो कहां है, कैसे है, ये शास्त्रों में तो बताया हमारे, लेकिन क्योंकि वो वैज्ञानिक शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते तो खाली उसको उन्होंने अपना साइंटिफिक टर्म दे दिया एंटी मैटर। तो मैटर का ऑपोजिट शास्त्र में क्या बताया गया, स्पिरिट है कि नहीं। अभी मान लीजिए कि मैं एक स्थिति को ऐसे डिस्क्राइब करूं कि अभी रात्रि है, तो मैं अगर ये कहूं कि कुछ एक घंटों के बाद रात्रि नहीं रहेगी, तो मैं ये समझाने की आपको कोशिश करूं, तो ये एक तरीका है समझाने का कि कुछ घंटों बाद ये जो आप अंधेरा देख रहे हो अंधेरा नहीं रहेगा, ये रात्रि नहीं रहेगी, ये लाइटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कहोगे अरे सीधा बोलो ना सुबह होगी, नहीं नहीं सुबह कैसे होगी, रात्रि नहीं रहेगी। अरे एक शब्द में शास्त्रों में बताया मैटर का ऑपोजिट स्पिरिट, नहीं स्पिरिट नहीं एंटी मैटर, वो जो मैटर नहीं है। तो ये किस प्रकार से है, इसको नेगेटिव इंट्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने यहां पर उपस्थित हूं, मान लीजिए कई बार हमारे ऐसे वन टाइम प्रोग्राम्स होते हैं तो मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये ऐसे ऐसे प्रीचिंग कर रहे हैं इतने समय से इस्कॉन में, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये इंट्रोडक्शन क्या है, मेरा पॉजिटिव इंट्रोडक्शन है। अब मान लीजिए कि मेरा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है और वही कहा जा रहा है लेकिन नेगेटिव तरीके से कि ये पिछले 15 सालों से इस्कॉन के बाहर नहीं रह रहे हैं, ये आपके सामने जो खड़े हैं ये जानवर नहीं है, ये अनपढ़ गंवार भी नहीं है, अंगूठा छाप भी नहीं है, ये सारे जो इंट्रोडक्शन है ठीक है कि ये सब नहीं है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये जो समझाना कि हाँ ये मैटर है और ये नहीं है, तो ये इसी प्रकार से समझाना हुआ कि ये 15 साल से व्यक्ति इस्कॉन में है और उसका अपोजिट समझा रहे हैं कि ये मनुष्य है इसलिए जानवर नहीं, या जानवर नहीं है इसलिए मनुष्य है। ये बताने की क्या जरूरत है कि कुत्ते जैसे तो नहीं दिखते, बोलते समय तो मनुष्य के जैसे बोलते हैं, भौंकते तो नहीं है, तो फिर मनुष्य हो, वो नहीं ये बोलते। तो यहां पर भगवान उसे बहुत सरल तरीके से जो ये ऑपोजिट्स लर्निंग फ्रॉम ऑपोजिट्स है जो आजकल वैज्ञानिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भगवान ने 5000 साल पहले ही एक श्लोक में बता दिया था। तो इसमें आप देखो वो लोग कहते हैं कि अगर ब्लिस है तो मिजरी भी है ना, आनंद है तो फिर दुख भी है उसके साथ, सुख है तो दुख भी है, एटर्नल टेम्पररी कॉन्शियस अनकॉन्शियस। हमने केवल कुछ लिए हैं मुद्दे, ऐसे बहुत से मुद्दे हम ले सकते हैं कि ऑपोजिट से हम सीख सकते हैं कि ये है तो वो है। जैसे कि एक सिक्का आप देखो, ये जो क्रिकेट में टॉस करते हैं तो ये सिक्का ऊपर उड़ाते हैं तो वो बोलते हैं ना कि हेड और टेल्स बताओ, बीच में बताओ, जब ऊपर करता तभी बोलता बोलो। जैसे दो टीम का मैच चालू होने वाला था तो एम्पायर ने दोनों कैप्टन को बुलाया, वो सिक्का ऊपर किया तो अपने इंडियन कैप्टन को पूछा जल्दी जल्दी बोलो, वो हकलाने लगा है, अरे जल्दी बोलो गिर रहा है वो, अरे फिर वो गिर गया, यही बोल यही था। तो वो जो सिक्का होता है उसका हेड और टेल, मतलब अगर वो हेड सामने दिख रहा है मतलब टेल है पीछे, है कि नहीं? केवल पिक्चरों में सिक्के होते हैं एक ही साइड में दोनों, लेकिन हेड और टेल वो साधारणतः अलग अलग ऑपोजिट्स हैं। तो हेड देख लिया तो समझ में आ गया पिछली तरफ क्या है, टेल है। टेल आ गया तो इस तरफ क्या है, हेड है। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मसंयमी व्यक्ति की दिनचर्या है वो एक साधारण या भोगी की तुलना में विपरीत होगी। तो अर्जुन, मतलब भगवान ये समझा रहे हैं कि अर्जुन तुमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कि जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या है, उसके ऑपोजिट लक्षण होंगे अस्वस्थ व्यक्ति के। तो स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण जान लो या अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण जान लो तो उसे दूसरे के लक्षण समझ में आ जाएंगे। तो ये भगवान कौन से उदाहरण से समझा रहे हैं, दिन और रात के उदाहरण से समझा रहे हैं कि जैसे दिन और रात है, अभी दिन और रात इसमें बहुत से डिफरेंसेस आप देखोगे। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि रात्रि के समय अंधकार और दिन के समय दिन का या सूर्य का उजाला। तो भगवान रात्रि और निशा या निशा काल, और संस्कृत में उसका ऑपोजिट बताया गया है निशांत काल, कि निशा का अंत या रात्रि का अंत या निशांत काल, ये बताया गया। तो अब ये जो उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने लिया है, तो हम पहले एक बस उस काल को लेके उसकी व्याख्या देखेंगे कि हमारे शास्त्रों के अनुसार ये निशा काल एवं निशांत काल क्या है। तो निशा काल बताया गया है ये जो समय है 10:34 PM to 3:22 AM, एग्जैक्ट पूरा मिनट टू मिनट बताया गया है कि कौन सा निशा काल है। तो यहां पे आप समझ लीजिए कि भगवान कह रहे हैं कि जो एक भोगी का दिन चालू होता है जब, वो आत्मसंयमी व्यक्ति का निशा काल है। तो साधारणतः हम क्या देखते हैं आजकल, ये टाइम पर पार्टियां चालू होती है ना, 10 के बाद। तो एक व्यक्ति जो उस चेतना में है तो उसका दिन शुरू हुआ है, दिन शुरू हुआ उसका उस समय। जैसे मुझे याद है जब मैं बॉम्बे राधा गोपीनाथ मंदिर में था, तो वहां पर हमारे मंदिर के आसपास बहुत सी बिल्डिंगें, तो सुबह हम लोग उठते थे 4:15 बजे, तो उस समय बहुत सी बिल्डिंगों में वो टीवी चलता रहता था उस समय। और जैसे ही हम नहा धो के मंगला आरती के लिए तैयार हुए जाने वाले हैं अब, तब उनका टीवी ऑफ होता था, मतलब तब वो लोग अब सोने गए हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, कि जो एक साधक या आत्मसंयमी व्यक्ति के जागरण का समय है वो एक निशाचर के सोने का समय। फिर निशा काल की अवधि यदि हम देखें तो इतनी अवधि बताई गई है, 4 घंटे और 48 मिनट। फिर निशांत काल, तो इसके पश्चात अब निशा का अंत हो रहा है, इसलिए निशांत काल की अवधि इतनी बताई गई, 3:22 AM to 5:46 AM कि इस पीरियड में कितना पीरियड हो गया, ये इसका कैलकुलेशन काफी समय लगा हमको ये कैलकुलेशन वगैरह निकालने में, तो 2 घंटा 24 मिनट। तो ये जो 2 घंटा 24 मिनट है ये अब उस निशाकाल का अंत, मतलब रात्रि का अंत हो रहा है इतने इतने इन प्रहरों में। और फिर निशांत काल, वो जो 2 घंटा 24 मिनट है, निशांत काल के 3 मुहूर्त बताए गए। अब देखिए मुहूर्त, ये कोई भी शुभ घड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, मुहूर्त, शुभ मुहूर्त। तो इसलिए वो जो 2 घंटा 24 मिनट है उसमें बहुत ही शुभ मुहूर्त बताया गया है, जिसके अंदर की कोई आध्यात्मिक क्रिया उसमें जब प्रारंभ करता है तो उसे कई गुना ज्यादा उसका फल प्राप्त होता है। तो ये जो 3 मुहूर्त है इसको डिवाइड किया है 48 मिनट्स। तो 48 × 3 हुआ 2 घंटा 24 मिनट, 144 मिनट्स, 144 मिनट्स। तो ये कैलकुलेशन इसलिए किया है कि एक एक मिनट उस समय का कितना महत्वपूर्ण बताया गया। और इसमें ये जो 3 मुहूर्त हैं निशांत काल के, इसमें जो सबसे ऑस्पिशियस मुहूर्त बताया गया है ब्रह्म मुहूर्त, सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस, और उसका ये टाइमिंग है, ये एग्जैक्टली 48 मिनट्स का ब्रह्म मुहूर्त, जिसके अंदर कहा गया है कि जब इस मुहूर्त में कोई आध्यात्मिक क्रिया करता है तो सबसे ज्यादा उसको इफेक्ट या उसका फल मिलता है। हालांकि भगवान का नाम तो हर समय लेना चाहिए, किसी भी समय कोई व्यक्ति ले सकता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि भगवान यहां पर काल के विषय में बता रहे हैं, कौन से, रात्रि और सुबह का समय। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं, कई व्यक्ति ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये टाइमिंग का इतना क्या है कि इतना आप कैलकुलेट किए हैं कि 48 मिनट्स में ब्रह्म मुहूर्त और वो 3 मुहूर्तों में से जो सबसे ऑस्पिशियस मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त 4:10 to 4:58 AM जरूरी है, AM ध्यान में रखना, वापस देखना पड़ा AM लिखा है कि नहीं। तो कोई पूछ सकता है कि भाई ये इतना टाइम की पाबंदी क्यों रखी गई। अब भगवान अर्जुन को ये बता रहे, मानो अर्जुन ये प्रश्न पूछे, तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो भोगी होते हैं वो भी टाइम के बहुत पाबंद होते हैं। यदि उनका आप टाइम टेबल देखो तो हाँ ऐसा ही टाइम टेबल होगा कि 10:34 PM से 3:22 AM तक हमारी निशाचर पार्टी चलनी चाहिए। क्यों? अब आपने कभी देखा है कि ये जो परमिट रूम बार, ये ब्रह्म मुहूर्त के समय लोग जा रहे हैं दारू पीने के लिए, नहीं, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट उस दारू का कब आता है, वो टाइमिंग होता है वो। हाँ, जो पूरा ही उसके अंदर है वो पूरा शुद्ध भक्त की तरह है, उसको कोई शुद्ध भक्त उसकी भी चर्चा करेंगे, वो कोई टाइमिंग का फॉलो नहीं करते हो, वो चाहे रात के 12 बज जाए, चाहे रात के 2:30 बज जाए, उनका जप चलता रहता है। जैसे हरिदास ठाकुर, अब ये नहीं कह रहे हैं कि जो परमिट रूम में जा रहे हैं वो उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, जो बहुत एकदम पूरे पियक्कड़ है, जो कभी वो बाटली को छोड़ते ही नहीं है, जैसे शुद्ध भक्त जप को छोड़ते ही नहीं है माला को। वहां पर भी देखिए उनका उनका मुहूर्त होता है, जो भी शुभ तो नहीं है, जो भी मुहूर्त होता है उसके अनुसार वो कार्य करते हैं, उसमें उनको ज्यादा इफेक्ट मिलता है। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि इंद्रिय भोगी व्यक्ति भी डिसिप्लिन फॉलो करता है। किसका डिसिप्लिन फॉलो करता है, क्या क्या उसका, जैसे कि लोग सिनेमा देखने जाते हैं, पूरा टाइमिंग पे चालू होता है एकदम सिनेमा, एकदम टाइमिंग पे चालू होता है कि ये डॉट इतने बजे सिनेमा चालू होगा, इतने बजे बंद होगा, और जिसको आके बैठना है पहले टिकट लेके पहले से आधे घंटे पहले से पंक्चुअलिटी स्थापित करके बैठ जाते हैं। तो वहां पर कितने भी ये सारे जो उनके साधन हैं उसके अंदर वो लोग टाइमिंग को फॉलो करते हैं। तो भगवान ये टाइमिंग को लेके, रात्रि और दिवस के टाइमिंग को लेकर, दिन और रात के टाइमिंग को लेकर समझा रहे हैं कि देखो जैसे कि ये दोनों ऑपोजिट्स हैं, वैसे उनकी लाइफस्टाइल्स और उनके एम्बिशंस, उनके डिजायर्स दोनों के एग्जैक्टली इंग्लिश में जो बोलते हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है साधना भक्ति के लिए ये टाइमिंग्स पता रखना। इसलिए कहा गया है कि ये जो टाइम है कौन सा, 4 hours 48 minutes का जो टाइम है, 4 hours 48 minutes, और खाली वो अवधि नहीं लेकिन वो 10:34 से 3:22 है, वो जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में क्यों कहा जाता है कि आप सो जाइए, क्योंकि वो टाइमिंग में, अभी महाशिवरात्रि गई है, शिवजी के जो अनुचर हैं बहुत से, कौन से हैं, सारे भूत पिशाच, उनकी मंगल आरती चालू होती तो वो लोग पूरा एक्टिव रहते हैं उस समय। तो इसलिए उस समय वो जो तमोगुण का प्रभाव इनके कारण, और प्लस जो आजकल कलयुग में इंद्रिय भोगी हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए बहुत डेडली है। एक तो ये लोग तमोगुण की एक्टिविटीज कर रहे हैं, टाइमिंग तमोगुण का है, देखिए ट्रिपल इफेक्ट, टाइमिंग तमोगुण का है, जो ये भूत पिशाच निकलते हैं उसी टाइम पे, तो वो तमोगुण अपने साथ लेके घूमते रहते हैं। और फिर जो कलयुग में उस टाइम पे लोग एक्टिविटी क्या करते हैं वो भी तमोगुणी एक्टिविटीज होती। तो टाइमिंग तमोगुण का, एक्टिविटीज तमोगुण का, और जो शिवजी के अनुचर घूम रहे हैं वो भी तमोगुण को लेके घूम रहे हैं। तो सोचो कि वो टाइम पे क्यों शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को सो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि सोने के लिए आपको तमोगुण की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति जो सत्वगुण में हर समय स्थित रहता है वो कभी सोएगा नहीं। खैर इस्कॉन के कार्यक्रम में ये टाइमिंग वाइमिंग की जरूरत ही नहीं है, बहुत से चाहे आप सुबह का लेक्चर रखो 8 बजे का श्रीमद् भागवतम क्लास, सारा निशांत काल, निशाकाल, निशांत काल सब चला गया, लेकिन फिर भी कई बहुत माहिर होते हैं, कोई भी टाइम पे रेडी रहते हैं, एवर रेडी टू स्लीप। तो यहां पर यह है कि उस समय ये इसका प्रकोप होता है, तमोगुण का प्रकोप होता है, और जैसे ही वो काल बीतता है, और आजकल तो साइंस भी ये कहता है कि ये जो काल है 10:34 PM to 3:22 AM, ये जो काल है इस काल में सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे शरीर के दिन भर के वो बाहर आते हैं। टॉक्सिन्स मतलब हमारे शरीर के अंदर से जो गंदगी, या टॉक्सिन्स का एक और अर्थ है जो जहर पैदा होता है, वो उस समय बाहर आते हैं। इसलिए सुबह उठते ही हम अपने आप को साफ करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जहर टॉक्सिन्स बाहर आया है, तो उसको साफ करना हर तरीके से। तो सोचिए कि उस समय जब कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में है तो वो अपने टॉक्सिन्स भी ट्रांसफर कर रहा है सब जगह पर, घूम घूम कर टॉक्सिन्स। मतलब मान लीजिए कि कहीं पे वो डिस्कोथेक में पार्टी चल रही है, तो वहां पे कितने सारे एक साथ आकर अपने अपने टॉक्सिन्स ट्रांसफर कर रहे हैं इधर उधर इधर। तो सोचिए कि कितना वो माहौल वो गुणों के वशीभूत हो जाता है। तो इसलिए ये खाली ये कोई सेइंग नहीं है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये बहुत इसके पीछे शास्त्र और आज साइंटिफिक कारण भी है कि क्यों ये टाइमिंग्स बताया गया। अब हम यदि भगवद गीता का एनालिसिस करें तो आज के श्लोक में भगवान ने जो कंपैरिजंस किया है, एक आत्मसंयमी व्यक्ति और एक साधारण या एक भोगी का, तो ये तीन चीजें हैं भगवद गीता में। आप देखिए, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। सो थीसिस का अर्थ होता है कि जो मुख्य मुद्दा है, एंटीथीसिस उसका ऑपोजिट, और सिंथेसिस क्या है, मुख्य मुद्दा और उसके ऑपोजिट को बैलेंस करना, उसको बोलते हैं सिंथेसिस, उसको बैलेंस करना। तो भगवद गीता में अभी आप देखें तो कर्म, भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए कह रहे हैं कि गांडीव उठाओ और तुम्हारा जो क्षत्रिय कर्म है करो, वो मेन पॉइंट है, उसके लिए भगवद गीता सुनाएंगे। और उसके साथ साथ फिर भगवान अर्जुन को यह भी कह रहे हैं कि ज्ञान से अर्जित हुए अर्जुन तो अपना कर्म कर। तो यहां पर ज्ञान जो है वो कर्म का एंटीथेसिस जैसा लगता है। इसलिए अर्जुन भगवान को ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, मेरे ख्याल से 5th chapter का है ये। अर्जुन पूछते हैं कि आपने कहा पहले कि मैं कर्म करूं, फिर एक ज्ञानी की परिभाषा मुझे दिए कि ज्ञानी वो है जो न तो कोई कर्म से प्रभावित होता है न कर्म के फल से प्रभावित होता है, तो अर्थात वो तो उससे ऊपर चला गया, तो फिर वो कर्म में लगा ही नहीं। तो हे भगवान, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो अभी, क्या मुझे ज्ञानी बनना चाहिए या मुझे ये आप जो कह रहे हो युद्ध कर एक कर्म योगी बनना चाहिए, कंफ्यूज हो रहा हूं क्योंकि दोनों ऑपोजिट लग रहे हैं मुझे। तो इसलिए फिर उसका सिंथेसिस है भक्ति। तो ये ध्यान में रखिएगा कि भगवद गीता को भगवान ने इतने सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली एनालाइज कर प्रस्तुत किया है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। कि कोई व्यक्ति ये अगर समझे कि भगवद गीता मतलब मैं केवल पढ़ता रहूं शास्त्र को अध्ययन करता रहूं और कुछ ना करूं, नहीं, वो गलत है। और बहुत से हैं जो ये सोचते हैं कि भगवद गीता मतलब बस कर्म करते रहो, भगवद गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, बस कर्म करते रहो, ये दूसरा ऑपोजिट। और इन दोनों को सिंथेसाइज किया है भक्ति ने, कि कैसे अपने कर्म को उस दिव्य ज्ञान के आधार पर करो, वो है भक्ति। तो आज के श्लोक में भगवान ने क्या किया है कि एक जो कर्मी है, कर्मयोगी नहीं, कर्मी, जो केवल कर्म में लगा हुआ है, शास्त्र पर आधारित कर्म नहीं, कर्मयोगी कर्म करता है शास्त्र पर आधारित, तो उसे लिया है उसकी रात्रि और एक भक्त का दिन, और एक भक्त की रात्रि और उसका दिन, ये दोनों को भगवान समझा रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या टेक्निक इस्तेमाल किया है, ग्लोरिफिकेशन बाय कंपैरिजन। तो ये कैसे समझ में आएगा, जैसे कि आजकल मार्केटिंग कैसे करते हैं लोग, कि अगर मैं आपको ये कहूं कि नासिक में हिंदुस्तान टाइम्स का सर्कुलेशन है 4 लाख, तो आपको कोई इतना असर नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान टाइम्स का सर्कुलेशन 4 लाख, यहां पे पूरे भारत की आबादी कुछ 110 कितने 110 करोड़ कितने हो गए आज 20 150 हो गया, 100 के ऊपर ही चलो, तो उसमें 4 लाख क्या पेपर। फिर यदि कहें कि गावकरी कि गावकरी का सर्कुलेशन केवल 2000 है, तो फिर अच्छा मतलब हिंदुस्तान टाइम्स का 4 लाख, गावकरी का 2000, हिंदुस्तान टाइम्स लेना चाहिए फिर। तो यहां पे आपको इंटरेस्ट हिंदुस्तान टाइम्स में कब आया, पहले नहीं आया, जब गावकरी का सुना, मुझे पता नहीं गावकरी का कितना होता है, याद आ गया। तो फिर उसमें वो कंपैरिजन जब दिया गया, तो कंपैरिजन आजकल वही मैं आपको पहले भी बता रहा था कि आजकल ये जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं इसमें ये लोग ऐसे ही कंपैरिजन कराते हैं। रिन साबुन, तो पहले कोई साधारण साबुन से वो कोई घिस रही नहीं जा रहा, पहले वो दिखाएंगे, है ना, फिर बाद में वो आती है एकदम साफ सुथरी साड़ी पहनकर, हाँ? वो लेती है, वो दिखाती है, अभी इसका कमाल देखो, थोड़ा ऐसे हिला दिया, 2 मिनट में चमक रहा, ये है रिन की सफाई, डबल पावर ट्रिपल पावर ये वो, फिर वो कंपैरिजन करके, तो फिर अब उसका नाम नहीं दिखाएंगे वो लोग, किसका, वो जो साधारण सी वो टिकिया थी उसका नाम नहीं दिखाएंगे, नहीं तो फिर उसके ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा। लेकिन कई बार वो लोग उसी फॉन्ट में जिसका वो प्रतिद्वंद्वी होते हैं, उसी फॉन्ट में और वही कलर की वो साबुन की टिकिया दिखाते हैं, उसका नाम नहीं बताएंगे। जैसे एक मुझे एक व्यक्ति ने, ये कोको कोला और पेप्सी दोनों प्रतिद्वंद्वी हैं एक दूसरे के, तो उसका एक एडवर्टाइजमेंट जो ब्रांड है वो बताया था कि एक व्यक्ति, ये जो मशीन होती ना पैसे डालो वेंडिंग मशीन, कि उसमें से वो कोका कोला और पेप्सी के वो कैंस गिरते हैं पैसे डाल के, तो वेंडिंग मशीन में एक लड़का जाता है, पैसे डालता है, और पहले कोका कोला की बॉटल दो उसमें से निकालता है, तो उन्होंने वो साफ साफ दिखाया नहीं कि उस पर कोका कोला लिखा है, लेकिन उसी फॉन्ट में है ना, टिपिकल कोका कोला का फॉन्ट, उसी फॉन्ट में उसी कलर में रेड और व्हाइट कलर में वो कैन है, और वो दोनों कैन के ऊपर खड़ा होके फिर वापस पैसे डाल के पेप्सी निकालता है। मतलब मुझे अगर वो पेप्सी पीना है तो ये दोनों पैर खड़े होके, मतलब इसके सर के ऊपर, इस कंपनी के सर के ऊपर खड़े होके तुम पेप्सी पियो, साला ऐसे मत पियो। अरे किसी को ये नहीं कह रहे कि वो पियो, पर किसी को अगर वो पीना है उसके सर के ऊपर खड़े रह के क्यों पीना है। तो इसका विकृत स्वरूप आजकल देखा जा रहा है। तो मैं मुझे ये बंबई में कुछ बिलबोर्ड्स लगे थे, ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इनके होते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आजकल ये जो कंपटीशन चल रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज और इनके अंदर, वो किस प्रकार का है। तो ये एक बिलबोर्ड जेट एयरवेज का बम्बई में, जिन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से किया, वी हैव चेंज्ड कुछ, तो उन्होंने अपना लोगो या ड्रेस कोड जो भी चेंज किया होगा, तो जेट एयरवेज ने यह एडवर्टाइजमेंट किया। फिर उसके एक हफ्ते बाद किंग फिशर ने अपना बोर्ड लगाया, मतलब समझो कि कोई उसको पढ़ेगा, तो इन्होंने बिचारों ने खाली एक अपना पब्लिसिटी स्टंट किया था कि अभी हम लोग चेंज हो गए हैं, तो हम लोग अच्छी तरीके से चेंज हुए हैं, तो आप लोग हमारे एयरलाइंस में बैठिए। तो उन्होंने ऊपर लगा दिया, हमने करवाया उनको चेंज। अच्छा इतना ही नहीं था, गो एयर ने ऊपर लगा दिया, वी हैव नॉट चेंज्ड, वी आर स्टिल द स्मार्टेस्ट वे टू फ्लाई। तो उसके ऊपर उन्होंने लगा दिया। इतना ही नहीं था, इंडियन रेलवेज वी विल नेवर चेंज। तो वो इन तीनों के बाप निकला, हालांकि वो सच भी बोल रहे हैं, वी हैव नेवर चेंज एंड वी विल नेवर चेंज। वो सच बोल रहे, बहुत ईमानदार है वो लोग। लेकिन इतना नहीं था, अब इसके ऊपर बीएसटी बस, उन्होंने ऊपर लगाया, अब बस करो। और आप वहां पे पढ़ नहीं पा रहे होंगे, वो जो अब बस करो लिखा है उसके नीचे लिखा है कि वरना प्लेन होर्डिंग को क्रैश कर जाएगा, आप बस कर लो, नहीं तो ये होर्डिंग के ऊपर होर्डिंग के ऊपर होर्डिंग जाता जाएगा तो प्लेन क्रैश कर जाएगा। तो सेफेस्ट इज, पता नहीं उसके आगे अभी लगाएंगे 11 नंबर की बस लो अभी पैदल। तो अब देखिए कहां से कहां वो आजकल प्रोडक्ट बेचने के लिए ये जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। तो ये ओरिजिन इसका कहां से है, आज का श्लोक जो है जिसके अंदर भगवान कह रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं, और कंपैरिजन और कंट्रास्ट, लेकिन वो जो कंपैरिजन और कंट्रास्ट भगवान अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो दिव्य स्तर पर है, वो विकृत स्तर पर नहीं है। इट इज नॉट परवर्टेड, इट इज बियॉन्ड। तो यदि हम अब कॉमन डिफरेंसेस देखें किसमें, एक मटेरियलिस्ट और एक स्पिरिचुअलिस्ट, एक योगी और एक भोगी, तो कॉमन डिफरेंसेस शुरू होते हैं इच्छाओं से। कि सबसे पहले एक जो भौतिकतावादी मनुष्य है उसकी किस प्रकार की इच्छाएं होती हैं, और एक आध्यात्मवादी की इच्छाएं, इच्छाओं से शुरुआत होती है और उनकी परिभाषाएं दी जाती हैं। फिर लाइक्स और डिसलाइक्स। अब आप देखिए जैसे कि एक न्यूज़पेपर है, तो कोई भौतिकतावादी मनुष्य होगा वो उस न्यूज़पेपर में कौन से पेज पे जाता है, और एक आध्यात्मवादी, आजकल न्यूज़पेपर में भी बहुत से स्पिरिचुअल आर्टिकल्स आते हैं, स्पीकिंग ट्री ये सब कुछ, तो वो डायरेक्टली उधर जाएगा। कोई डायरेक्टली स्पोर्ट्स उल्टा पन्ना करके स्पोर्ट्स खोलता है वो सीधा। कई हैं पॉलिटिक्स, उसके अंदर कि कहां क्या घोटाला हो रहा है, किधर सेंसेक्स क्या है, उधर जाते हैं सीधा, क्या चल रहा है उसके वहां पर। तो लाइक्स और डिसलाइक्स के अनुसार व्यक्ति का डिफरेंसेस बताया गया। फिर एसोसिएशन, कि वो किस प्रकार का संघ करता है, वो व्यक्ति का संघ निर्धारित करता है whether that person is a spiritualist or a materialist, habits and lifestyles। जैसे हम इस्कॉन में आए, इस्कॉन में आने से पहले हमारी क्या आदतें थी, क्या हमारा lifestyle था। अभी जैसे आज के श्लोक को लो तो भगवान एक lifestyle बता रहे हैं एक आत्मसंयमी व्यक्ति का, जो कि ब्रह्म मुहूर्त के समय कम से कम उड़ जाता है। हाँ, उस समय उठने का महत्व बताया गया है कि उठने मात्र से हमारे अंदर वो सत्वगुण अर्जित होता रहता है। अब वही हमारी एक ऐसा समय था हमारा कि हमारा लाइफस्टाइल पूरी विपरीत थी उसकी, कि हो सकता था हम में से कोई उस समय जैसे हमने बताया सोने जाते होंगे, तब हमारी रात्रि शुरू होती है जब ब्रह्म मुहूर्त में एक आत्मसंयमी का दिन प्रारंभ होता है। तो वैसे ही हमारे लाइक्स, डिसलाइक्स, डिजायर्स, एसोसिएशन, ये सब कुछ उसके अनुसार। और अल्टीमेटली भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में कि गोल्स और एम्बिशंस, क्योंकि शुरुआत कहां से हुई है, वट एवर यू डिजायर विल बिकम योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एंड अकॉर्डिंग टू योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स यू विल चूज योर एसोसिएशन, एंड अकॉर्डिंग टू योर एसोसिएशन यू विल डेवलप योर हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल्स, एंड अकॉर्डिंग टू योर हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल्स यू विल हैव योर गोल्स एंड एम्बिशन। तो ये कनेक्टेड है, ये मत समझना कि इंडिविजुअली ये प्रेजेंट किए गए हैं, ये भगवद गीता में भगवान एक एक कर इसको कनेक्ट कर रहे हैं। और आज के श्लोक में संक्षिप्त रूप में कह दिया भगवान ने, हालांकि इलैबोरेटली पूरे भगवद गीता में बताया भगवान ने कि कैसे, हमने वो श्लोक लिया था 2.62 ध्यायतो विषयान पुंसाम, कि कैसे वो जो विषय के ऊपर जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी इच्छाएं जागृत होती हैं, फिर काम वासना जागृत होती है, फिर क्रोध, फिर उसके बाद प्रणश्यति, ये सब कुछ। तो ध्यान में रखिएगा, इफ वी वॉन्ट टू फॉलो दिस पर्टिकुलर वर्स ऑफ टूडे that we want to become atmasayami and not, we want to become the yogi and not the bhogi, definitely not rogi. So we have to change our desires, which will change our likes and dislikes, our association, habits, lifestyles, and ultimately goals and ambitions. So हम यदि ये डिफरेंस लें एक मटेरियलिस्ट और एक स्पिरिचुअलिस्ट का, तो हमारे सामने सबसे पहले महाभारत से दो का उदाहरण है, एक जिसकी रात्रि और जिसका दिन, जिसका दिन उसकी रात्रि, इस प्रकार से। तो दुर्योधन और युधिष्ठिर, तो इनके जीवन का प्रसंग है कि भीष्म पितामह ने दोनों को भेजा था हस्तिनापुर के राज्य में जाकर क्या ढूंढने के लिए। दुर्योधन को बोला कि जाके ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुमसे ज्यादा उत्तम हो, और युधिष्ठिर महाराज को भेजा ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुमसे ज्यादा अधम हो। दोनों वापस खाली हाथ आ गए। दुर्योधन कहता है मुझसे ज्यादा उत्तम तो कोई मुझे मिला नहीं, और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मुझसे ज्यादा अधम मुझे कोई मिला नहीं। तो ये दोनों के आइडियोलॉजीज और थॉट प्रोसेस, थॉट पैटर्न्स में कितना डिफरेंस बताया गया। फिर हिरण्यकशिपु और प्रहलाद, वही भगवान श्री विष्णु की भक्ति अपना सर्वस्व प्रहलाद महाराज न्यौछावर कर रहे थे, और वही परिवार के हिरण्यकशिपु के पिता वो भगवान विष्णु को मारना चाहते थे। तो दोनों एक ही परिवार के, ये भी दोनों एक ही परिवार के, कौन, युधिष्ठिर और दुर्योधन, और यहां पर प्रहलाद और हिरण्यकशिपु एक ही परिवार के, लेकिन दोनों ऑपोजिट्स। और फिर रावण और विभीषण, ये भी एक ही परिवार के। यहां पर हम ये एक ही परिवार के सदस्यों को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बताया गया है कलयुग में ये हमारे अंदर ही दोनों हिरण्यकशिपु और प्रहलाद है, रावण और विभीषण है, और दुर्योधन और युधिष्ठिर है। दैवी आसुरी संपदा ये दोनों हमारे अंदर, हमारे हृदय में कलयुग के अंदर है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि हम भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करेंगे तो कैसे हम किसकी शरण लेंगे, युधिष्ठिर, प्रहलाद और विभीषण की, जैसे उन्होंने अपने डिजायर्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, एसोसिएशन, हैबिट्स, लाइफस्टाइल्स और अल्टीमेटली अपना गोल, एम्बिशन, वो दैवी संपदा बनाया। तो ये इनका उदाहरण है। इसी संदर्भ में बहुत सुंदर श्लोक मुकुंद माला स्तोत्र में है, महाराज कुलशेखर द्वारा कहा गया है, नाथेन पुरुषोत्तमे त्रिजगताम एकाधिपे चेतसा सेव्य स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति यम कंचित पुरुषाधमम कटिपय ग्रामेश अल्पार्थदम सेवा ये मृगया महे नरमहो मूढ़ वरा का वयम। आर मास्टर द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड नारायण हु अलोन रूल्स द थ्री वर्ल्ड्स whom one can serve in meditation and who happily shares his personal domain is manifest before us. Yet still we beg for service of some minor lord of few villages, some lowly man who can only meagerly reward us. Alas, what foolish wretches we are. तो यहाँ पर महाराज कुलशेखर इस एक श्लोक में एक जो भोगी है और एक योगी है ये दोनों के लाइफस्टाइल का एक श्लोक में वर्णन किए कि उन दोनों का लाइफस्टाइल क्या है, एक इंद्रिय भोगी और एक आत्म संयमी। तो इसका हम थोड़ा ये किए हैं, एनालिसिस किए श्लोक का। तो इसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि एक जो मटेरियलिस्ट है उसका बॉस कौन है, पुरुष अधम। पुरुषों में जो अधम है, लोली अमंगस्ट ह्यूमन बींग्स, वो उसका बॉस है, उसकी सेवा में लगा है वो। और एक जो स्पिरिचुअलिस्ट है उसने किसको अपना बॉस चुना है, पुरुष उत्तम। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है पुरुषोत्तम, उसका अर्थ क्या है, जो पुरुषों में उत्तम है। तो ये पहला डिफरेंस। फिर दूसरा डिफरेंस है कि वो जो पुरुष अधम है वो ले देख के किसका मालिक है, अल्पग्राम। उस श्लोक में कहा गया है ओनर ऑफ फ्यू, आज की भाषा में फ्यू कंपनीज, लेकिन पुरुष उत्तम उनको जिसने बॉस बनाया है उनका स्टेटस क्या है, ओनर ऑफ द एंटायर क्रिएशन। तो यहां पर महाराज कुलशेखर ये श्लोक के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर कोई बिजनेस मेंटालिटी वाला भी हुआ है ना, बिजनेस मेंटालिटी वाला कौन होता है जो चूज करता है मैं कौन सी कंपनी में ज्वाइन करूं, बॉस कितना टर्नओवर है, कितनी कंपनीज वो ओन करता है। तो यहां पे देखिए बिजनेस मेंटालिटी के दृष्टिकोण से भी प्रॉफिटेबल क्या है। फिर आगे वो कहते हैं कि ये जो भौतिकतावादी मनुष्य है उसको उस पुरुष अधम को प्रसन्न करने के लिए अथक मेहनत करनी पड़ती, कठोर परिश्रम करना पड़ता, खून पसीना बहाकर फिर भी वो बॉस खुश नहीं होता। होते हैं बॉस खुश होते हैं, रिटायरमेंट पे सब कुछ जो दिया है वो ले लेते हैं। और यहां पर वो कहते हैं चेतसा, केवल चेतना से भगवान श्री कृष्ण की सेवा वो व्यक्ति कर सकता है, जस्ट सिंपली बाय मेडिटेटिंग ऑन द सुप्रीम लॉर्ड। भगवत गीता में भगवान ने क्या कह दिया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, कि केवल मुझ पर ध्यान करो, ध्यान करने मात्र से कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस संसार में कोई ऐसा बॉस नहीं जिसके ऊपर आप ध्यान करो और वो खुश हो जाएगा कि हाँ आज तुमने मुझ पर ध्यान किया, मैं अति प्रसन्न हूं, बोनस तुम्हारे लिए नहीं। और फाइनल डेस्टिनेशन क्या है?